उसके बाद फरमाया वल्लदीना आमनू वामिलु सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने सौले अमल किए, अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा। अब देखिए वहां पे सौफा आया, यहाँ पे सा आया। सौफा और सा में दोनों का माना हमने अनकरीब लिखा, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। सौफा में थोड़ा सा टाइम ज्यादा है बाईद के लिए, और सा करीब के लिए। यानी उन्होंने इनकार किया तो फौरन अल्लाह ने पकड़ के उनको आग में नहीं डाल दिया, बल्कि उनको मोहलत दी, चांस दिए, जिंदगी में आजादी दिए रखी, उनको मौके दिए कि वो तौबा कर लें, लेकिन नहीं किया उन्होंने। ये अल्लाह ताला का रहमत इससे पता चलती है कि अल्लाह ताला वक्त देता है, चांसेस भी देता है, दिखाता है इंसान को। तो सौफा है, और ईमान लाने वालों के लिए और साले अमल करने वालों के लिए सनुदखिलुहुम, इधर मरेंगे उधर जन्नत के ठिकाने दिखा दिए जाएंगे। इंसान का दिल ठंडा हो जाए, मुतमईन हो जाए, पुरसकून हो जाए। यहां से जाता है तो एक कब्र के अंदर भी उसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाती, और कयामत के दिन भी जन्नतों में जल्दी दाखिल कर दिए जाएंगे। तो एक तरफ अजाब है, दूसरी तरफ जन्नत है। देखे लेकिन फिर भी ना अल्लाह की रहमत उसके अजाब से कहीं बड़ी है, इसलिए कि याद रखें जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा। अल्हम्दुलिल्लाह कि फरमाया वो हमेशा हमेशा वहां रहेंगे। अच्छा अब आप देखें, जो जन्नत में चला गया ना कभी उससे नहीं निकलेगा, मगर हाँ जो जहन्नुम में चला गया तो अल्लाह ताला चाहे तो उसको निकाल देगा और जन्नत में दाखिल कर देगा। कभी जन्नती को नहीं जहन्नुम में डाला जाएगा कि वो कभी अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, अब तुम जहन्नुम में भी जाके थोड़े दिन रहो, नहीं। मगर जहन्नमी ऐसे जरूर हैं जिनका हम हदीस में पढ़ते हैं कि उनको निकाला जाएगा और जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अच्छा ये थोड़ा सा पार्ट मिस कर दिया मैंने, इन अल्लाह कैन अजीजन हकीमा, बेशक अल्लाह जबरदस्त भी है, गलबे वाला है, कहर वाला है और हिकमत वाला है। कोई ये ना समझे अल्लाह से कहीं भाग सकता है, वो गलबे वाला है, कुदरत वाला है और हिकमत वाला है। कोई ये ना समझे फिर क्या हो गया था, अगर इन्होंने इनकार कर दिया था तो कोई बात नहीं, फिर इनको इतना अजाब क्यों दिया जा रहा है। अल्लाह के पास हिकमत है, उसको पता है, वो अजीज है और पूरी अथॉरिटी उसके पास है। जब जबरदस्त हम कहते हैं ना, व्हाट डज दैट मीन, जबरदस्त है, अगर नहीं समझ आई तो समझने की जरूरत है, क्या मतलब हुआ। उसके पास फुल अथॉरिटी है, फुल ताकत है, कोई भी काम करने के लिए उसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतनी अथॉरिटी होने के बावजूद उसके हर काम में हिकमत है, ऐसे अलर्ट तप काम नहीं है कि जज्बाती जैसे हम काम कर देते हैं, हमारे पास जरा सी पावर आ जाए फिर हम इतने जज्बाती हो जाते हैं, किसी दिन गुस्सा आ जाता है तो फिर कुछ कर बैठते हैं, किसी दिन हमारा दिल खुश होता है तो फिर कुछ और तरह से बिहेव करते हैं, ऐसे नहीं है। उसके सारे जो जितने भी उसके अफाल है वो सब हिकमत पे मबनी है। अल्लाह अकबर। अच्छा लहुम फीह अजवाज मुतहरा, उनके लिए वहां पे इन जन्नत में होंगे जोड़े पाक। अजवाज का लफ्ज ना सिर्फ बीवियों के लिए नहीं होता, शौहर के लिए बीवी जौज है और बीवी के लिए शौहर जौज है, ठीक है। तो पाक जोड़े होंगे, यानी मर्दों को भी पाक बीवियां मिलेंगी और जो औरतें भी हैं उनके भी शौहर पाक होंगे, पाक जोड़े होंगे उनके साथ। अब ये क्या ये दुनिया वाले ही शौहर होंगे, या दुनिया में कोई औरत अपने शौहर से तो बड़ी तंग आ गई भी है, वो कहती है कि इस मुसीबत को वहां पे भी मैं झेलूंगी, और या किसी का शौहर मसलन है, बीबी आसिया है, उनका शौहर तो जन्नत के अंदर जाना ही नहीं है उसने, तो फिर वो क्या बगैर जोड़े की होंगी, नहीं, वहां पे अल्लाह ताला और जोड़े दे देगा, नए जोड़े बना देगा, ठीक है। क्या वो दुनिया वाले ही जोड़े होंगे या कोई और नए जोड़े होंगे, वल्लाहु आलम, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी बिन ब्याही लड़कियां होती हैं, वो अब दुनिया चली गई, उनकी शादियां ही नहीं हुई थी तो उनको कौन से शौहर मिलेंगे फिर? उनके तो दुनिया वाले शौहर तो होंगे ही नहीं वहां पे, वो थे ही नहीं। अल्लाह ताला उनके लिए कोई देगा उनको शौहर? ठीक है, तो लेकिन वो पाक जोड़े होंगे। वनुदखिलुहुम, और हम दाखिल करेंगे उनको, ज़िल्लन ज़लीला, सायों में घने। कैसे साए वो होंगे? ठंडे साए, पुरसकून साए, लंबे साए। कि हदीस में आता है कि एक दरख्त वहां पे ऐसा है कि घोड़े पे कोई घुड़सवार है ना, घोड़े पे बैठ के घोड़ा दौड़ाता है दौड़ाता है दौड़ाता है, 100 साल तक घोड़ा दौड़ाता रहता है, लेकिन उस दरख्त का साया ही नहीं खत्म होगा। अब ये दुनिया में कुछ हम समझ सकते हैं? इतने घने, इतने गहरे और इतने लंबे साए होंगे, और अरबों को तो साए बहुत पसंद थे क्योंकि वहां पे बहुत शदीद गर्मी होती थी। तो साया, आप वैसे भी साया जो होता है ना, एक इंसान के लिए ठंडक और सुकून का एहसास देता है ना, तो ठंडक और सुकून के एहसास इसमें आते हैं। तो अब ये दो अंजाम दिखा दिए गए, हर इंसान का कोई एक ही अंजाम हो सकता है, ऐसे नहीं वहां पे कोई तीसरी भी जगह हो के जहां पे वो जाके रेस्ट कर ले, वो नहीं है। सूरह आराफ में हम देखेंगे वो भी एक टेम्प्रेरी कोई एक चीज है, मगर अदरवाइज कोई तीसरा ठिकाना नहीं है, या तो ये या फिर ये। तो फिर जो बोगे वो ही वैसा ही काटोगे। इन अल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाती इला अहलिहा, बेशक अल्लाह हुक्म देता है तुमको कि तुम अदा कर दो अमानतों को उनके अहल की तरफ। अमानतें तुम उनके अहल को दे दिया करो, उनके अहल तक पहुंचाओ अमानतों को। पहली तो बात है कि अमानत क्या चीज होती है, किस चीज को हम कहते हैं कि ये अमानत है? जो किसी के सपुर्द की जाए उस पे भरोसा करके, ठीक है, उसके किसी के हवाले की जाए उसके ऊपर भरोसा करके, उसको हम कहते हैं अमानत। अमानतें अल्लाह की तरफ से भी हमें मिली हुई है, ये जिस्म अमानत है अल्लाह की, औलाद अमानत है, ये घर बार माल अमानत है अल्लाह की, हमारा अपना थोड़ी है, हम लेके थोड़ी आए थे, ये तो अल्लाह ने दे दिया। ये आंखें अमानत है, ये कान अमानत है, ये सब अमानत है, ठीक है। दूसरी एक अमानतें होती हैं जो इंसानों की आपस के अंदर होती हैं, यानी इंसान किसी को अमानत कोई चीज रखवाता है, किसी के पास कोई अमानत देता है किसी को, किसी के सपुर्द कोई जिम्मेदारी भी हो सकती है, कोई चीज भी हो सकती है, कोई बात भी हो सकती है जो अमानत के तौर पे आपके पास रखवाई जाए। देखो मेरी ये बात किसी को बताना नहीं, ये अमानत है, वो भी अमानत होती है, हम कहते हैं ना ये अमानत है आपके पास मेरी ये बात, वो राज होता है किसी का, पोजीशंस हैं, काबिलियतें हैं, ये सारी चीजें अमानतें हैं। फरमाया उनको उनके अहल के पास दो, उनके अहल के सपुर्द करो। क्या मतलब है? यानी जो इस लायक है कि वो उस अमानत को संभाल सके उसी को दिया करो, ऐसे ही अमानते किसी के हवाले नहीं कर देनी चाहिए। अहल कौन होता है किसी अमानत का? जो अमानत को ले। अब ये बात आप लिख लें अपने पास, मतलब किसको हम कहेंगे ये अहल है इस अमानत का? जो अमानत को ले तो अमानत की हिफाजत करे पूरी तरह, पूरी अपनी सलाहियत लगा दे उस ईमानत अमानत को की हिफाजत में, और नंबर टू उस ईमानत को अपने पर्सनल यूज में ना लेकर आए, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अमानते इंसान इंसानों के पास रखवाते हैं, तो वो कैसी अमानते? मसलन ये जो सारी हमने बातें की कि कोई ओहदे हैं, कोई कोई चीज है, कोई कुछ है, उसको उसके अहल के पास दो। यानी जब आप अमानत किसी को दें तो उससे पहले देख लें कि वाकई ये इस अमानत को संभालने के काबिल भी है कि नहीं, इस अमानत को पूरी तरह से निभा सकता है कि नहीं। अगर वो नहीं उसके काबिल तो उसको वो अमानत ना दी जाए। क्या मतलब है? असल बात ये कि मेरिट की बेस पे लोगों को रखा जाए, काबिलियत देख के उसको अमानत दी जाए, क्योंकि ओहदे जॉब्स ये अमानते हैं, ठीक है, इनको उनके अहल के सुपुर्द करना जरूरी है। इस हुक्म पर अमल नहीं किया जाता तो आज हमारे माशरों का हाल देखें क्या है, वहां पे किसी को भी ओहदा किस बेस पे दिया जाता है, वो हमारा रिश्तेदार है, वो हमारे दोस्त है, बाब है, इसकी सिफारिश बहुत बड़ी आई है, रिश्वत बहुत बड़ी दे रहा है। और होता फिर क्या है, ना अहल लोगों के हाथों में जॉब्स आ जाती हैं, डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, हुकूमतें आ जाती हैं, और उसके बाद वो उनको फिर कैसे चलाते हैं और उनका कैसा बेड़ा गर्क करते हैं कि फिर उसके बाद हम ही शिकायत कर रहे थे, लोग देखो बड़ी करप्शन है, बड़ी है, वो कैसे नहीं हो, आपने ना अहलों को तो दे दी सारी चीजें। और हमारे यहाँ तो चलता ही ये है कि किसी ने बताया कि जॉब मिल ही नहीं सकती बगैर सिफारिश के और या रिश्वत के, इसके बगैर मिल ही नहीं सकती आपको जॉब, तो वहां पे अहल लोग बैठेंगे, वहां पे तो वही बैठेगा जिसकी जितनी बड़ी सिफारिश होगी या जितनी बड़ी रिश्वत होगी। कुरान कहता है कि आप अमानतें सिर्फ अहल को दो, वरना ये सारा निजाम बिगड़ जाएगा, वरना मुल्कों के माशरों के निजाम खराब हो जाते हैं। और ये अल्लाह ताला ने इसीलिए अहकामात दिए हैं ताकि हमारी, देखिए ये हमारी दुनिया की जिंदगी के लिए भी सकून और इत्मीनान के लिए है कि हमारी ये सिर्फ आखरत की बातें नहीं हो रही, अमानतों की तो आखरत में भी पूछ होनी है, लेकिन दुनिया की जिंदगी भी आपकी इन्हीं अहकामात पे अमल करने से पुरसकून होती है। कुरान के अहकाम आप सोचते हैं बस उससे हमारी आखरत सही हो जाएगी, नहीं, किसने कहा कि सिर्फ आखरत सही होगी, दुनिया भी इससे बनती है। जितने आपको मियां बीवी के ये पीछे सारे अहकाम विरासत के जितने आपने अभी तक पढ़े, इनको आप इंप्लीमेंट करते हैं ना तो माशरे पुरसकून हो जाते हैं, ये कियोस खत्म हो जाएगी, ये दुश्मनियां जो आपस में ये खत्म हो जाएंगी। और आज देखें जब ना अहलों को जब चीजें दी जा रही हैं तो क्या हाल है, निजाम तो बिगड़ ही रहा है मगर ट्रस्ट भी खत्म हो गया, हर कोई अब दूसरे को देखता है वो सिफारिश चला रहा है तो मैं भी चलाऊंगा। तो अमानत इतनी बड़ी चीज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ काफिर दारुन्नदवा में बैठ के कत्ल की साजिश कर रहे हैं लेकिन उनकी अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही पड़ी हुई हैं, यानी दुश्मनी जितनी मर्जी थी मगर उनको ये ट्रस्ट था कि ये बंदा अमानतदार है, ये हमारी अमानतों को जाया नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के ऊपर उनको फिर भी नहीं शक था कि ये कोई लेके भाग जाएगा, लेकिन आज यही किरदार खत्म हो गया, ये हमारे अंदर से अमानत उठ गई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ही खुतबा ऐसा होगा जिसमें आपने ये ना हुक्म दिया हो कि अमानतों का पास रखो, अमानतों के ख्याल रखो, अमानत की अल्लाह ने पूछ करनी है, जिसमें अमानत नहीं उसमें फरमाया ईमान ही नहीं है। कोई इंसान समझता है ना मैं बड़ा ईमान वाला हूं, नमाजें रोजे बड़े हो रहे हैं, मस्जिदों के अंदर जा रहे हैं और अमानतों का ख्याल ही नहीं है, तो वो उसका ईमान नहीं है जिसमें अमानत नहीं है। कोई आपसे कोई मशवरा भी पूछता है ना तो उसको अब मैं कुछ ऐसा मशवरा बता देती हूँ, खुद ही घूमते फिरेंगे, कुछ लोग मजाक के अंदर ऐसे करते, कोई रास्ता भी पूछ लेना तो उल्टा रास्ता बता देंगे, फिर बाद में हंसेंगे कि देखो हमने क्या ऐसा इसको किया, खुद ही ढूंढता फिरे आप। तो मशवरा भी अमानत होती है, कोई आपसे कोई बात पूछ रहा है जिसका आपको इल्म है और आपने उसको गलत बात बता दी है, ये भी अमानत थी। अमानत बात भी हो सकती है, अमानत कोई चीज भी हो सकती है। अब कोई चीज आपके पास मसलन रखवाता है, वो कहता भाई मैं जा रहा हूँ वेकेशन पे, आपके पास ये मेरी गाड़ी है तो आपके घर पे खड़ी भी है, अब आप उसकी वो हालत करें उसको चला चला के उसका बेड़ा गर्क करके जब वो आए तो अपनी गाड़ी को पहचान ही ना सके, ये क्या होगी फिर, अमानत में खयानत की है ना। इस तरह से ये मैं आपको समझा रही हूँ कि अमानत ये को पूरा करना क्या होता है, कि इंसान उस चीज की हिफाजत करे जो अमानत उसको दी हुई। इसी तरह कोई किसी ऑफिस में उसको जॉब मिल गई है तो अमानत की हिफाजत क्या होगी, कि अब वो उस जॉब को अपनी पूरी जान लगा के करे, ये उसकी हिफाजत है, और उस जॉब की जो चीजें हैं उनको अपने पर्सनल यूज में ना लेकर आए, ये है। अब हम कहें हम तो कोई ना जॉबें देते हैं ना कोई हम इस तरह करते हैं तो हमारी क्या, नहीं, जो आपके घर हैं वो उनके बारे में भी आपसे सवाल होगा ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि हर इंसान एक राई है और उससे उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। आपकी कोई बड़ी बड़ी सल्तनत नहीं है, कोई जो बड़े बिजनेस नहीं है, कोई ऐसी जॉब्स पे आप हायरिंग नहीं करते, लेकिन आपकी रैयत आपकी ये बच्चे हैं, आप आपके पास ये अमानत है, आपके घर आपके पास अमानत है। और याद रखिए ये जो ओहदे है ना जॉब्स, इनके बारे में पहली शर्त यह है कि जो बंदा ओहदे का लालची ना हो उसको दिए जाए, जो तड़प तड़प के भड़क भड़क के मांग ना रहा हो उसको दी जाए। हमारे यहाँ ये एक बड़ी वो हो चुकी है ये कि ओहदे मांगे जाते हैं, पोजीशंस मांगी जाती हैं, हालांकि जो इंसान वाकई समझता है ना ओहदे को एक अमानत, वो तो ये समझ सकता है कि अमानत का अल्लाह ने सवाल करना है, और अगर मैंने इसमें कोई कोताही की तो फिर मेरे से पूछ होगी, तो वो तो इससे बचता है, मेरे से पूछ होगी तुमने इसको सही तरीके से चलाया कि नहीं चलाया, तुमने अपने जाती इस्तेमाल में तो नहीं यूज कर लिया, तुमने क्या इसके अंदर कोई गलती तो नहीं की। क्यों हजरत उमर रोते थे पता है, 22 लाख मुरब्बा मील तक उनकी ये खिलाफत फैल चुकी थी, इस्लामी हुकूमत, तो रोते थे, कहते थे कि अगर दरियाए फुरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो उमर से उसका सवाल होगा, क्योंकि ये मेरी खिलाफत के अंडर हुआ। तो जो बंदा इसको एक जिम्मेदारी समझता है वो तो मांगता ही नहीं ओहदे, वो तो मांगता ही नहीं पोजीशंस। तो हमारे तो आज ये हाल हो गए कि हम तो ओहदे और उनकी और ये जो सियासत के अंदर भी है, आप देखें कि किस तरह से मांगा जाता है बाकायदा कि आप बस हमें बना दें, हम तो आपके गम में घुले चले जा रहे हैं, हमें तो रातों को नींद ही नहीं आती गरीबों के दर्द में। तो हम मैं ये जो बात कर रही थी ना कि हम ये सोचते हैं ना हमारे पास तो कोई ऐसा बड़ी चीज नहीं है कि हम उसमें अमानते किसी को दें, लेकिन ये जो आप वोट डालते हैं ना ये भी एक अमानत है, इसको भी उसके अहल के सपुर्द करना चाहिए, क्योंकि जो आगे आदमी बनता है कोई भी वजीर या जो भी, वो आपके वोट से बनता है, और ये अल्लाह का हुक्म है कि अहल को अमानत दो, ना अहल को ना दो। अब हम कहते हैं ना तो कोई है ही नहीं है तो हम क्या करें, नहीं, ना अहल को ना दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अमानते जाया होने लगे ना तो कयामत का इंतजार करो, यानी फिर आप समझ लेना कि कयामत कयामत करीब ही है। और इस आयत के शाने नजूल में भी एक वाक्य आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में शरीफ तशरीफ लाए, तो अपनी ऊँटनी पर सवार होकर आपने तवाफ किया, और उसके बाद उस्मान बिन तलहा के पास चाबी होती थी, वो चाबी के यानी उनके सुपुर्द होती थी, उन कुंजी बरदार जिसको कहते हैं, तो वो थे काबा के, तो उनको बुलाया, उनसे चाबी मांगी, तो वो अपने घर गए, बाज जगह पर रिवायत में आता है कि उनकी माँ ने मना किया या जो भी था, मगर आप फाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने तो लानी थी, वो लेकर आए चाबी, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देनी चाहिए, तो इतने में हजरत अब्बास ने कहा या रसूलल्लाह आप मुझे ये चाबी दे दें ताकि मेरे घराने में जमजम का पानी पिलाना भी और काबे की चाबी रखनी, ये दोनों चीजें आ जाए। और ये बहुत बड़ी बात थी ना, आप आज भी सोचें आज हमारे लिए कितनी बड़ी बात है कि जो हम कितना रश्क करते हैं उनके ऊपर जिनके पास काबे की चाबी होगी। तो ये बात जब सुनी हजरत उस्मान बिन तलहा ने तो अपना हाथ रोक लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मांगी, फिर यही वाकया हुआ, फिर तीसरी दफा मांगी, फिर यही वाकया हुआ, और फिर उस दफा तीसरी दफा हजरत उस्मान ने ये कह के दे दी कि अल्लाह की अमानत मैं आपको देता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा का दरवाजा खोल के अंदर गए, नमाज वगैरह वहां पे पढ़ी और सब किया, फिर आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा भी दिया, खुतबा पूरा करके आप बैठे ही थे कि हजरत अली आगे बढ़े और फरमाया कि आप चाबी मुझे दे दें ताकि बैतुल्ला की चौकीदारी का और हाजियों को जमजम पिलाने का जो मनसब है ये हमें ये दोनों काम हमारे ही फैमिली में आ जाए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नहीं दी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ में मशगूल हो गए, अभी चंद ही फेरे लगाए थे कि जिब्राईल अलैहि सलाम नाजिल हुए और यही आयत लेकर नाजिल हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक पर यही आयत तिलावत थी। तो इस पे हजरत उमर ने फरमाया था कि मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप इससे पहले तो हमने आपसे कभी ये आयत की तिलावत नहीं सुनी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त पे हजरत उस्मान बिन तलहा को बुलाया और उनको चाबी दी और फरमाया आज का दिन वफा का दिन है, नेकी का और सलूक का दिन है। और फरमाया था उस वक्त ही कि तुमसे अब कोई जालिम ही होगा जो ये चाबी लेगा, अब ये चाबी यानी आप ही के खानदान में रहेगी, हजरत उस्मान बिन तलहा के, और आज तक ये चाबी उन्हीं के खानदान में है। तो अमानत उनके सुपुर्द की गई जो अमानत के अहल थे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो तुम्हारे साथ अमानतदारी का बर्ताव करे उसकी अमानत अदा करो, और जो तुम्हारे साथ खयानत करे तो तुम क्या करो। हम कहते हैं ना, वो कौन सा ऐसे करते हैं, वो कौन से अमानतदार हैं, तो हम भी फिर ये करेंगे। तो फरमाया नहीं, तुम उसे खयानत मत करना। क्या समझ आई है? होना तो ये चाहिए था जो तुम्हारे साथ अमानतदारी करे तुम भी उसके साथ अमानतदारी करो, जो खयानत करे तुम भी उससे खयानत करो। फरमाया जो तेरे साथ खयानत करे उससे खयानत मत कर। क्योंकि कयामत के दिन तो हर हकदार को उसका हक दिला दिया जाएगा। अमानत जो है ना वो देनी पड़ेगी, जो किसी की अमानत के अंदर कोई भी हमने अल्लाह ना करे कोई मसला किया हो, इवन यहां तक के शहीद जो होगा उसके भी गुनाह मिटा दिए जाते हैं, मगर अमानत नहीं मिटने लगी। कयामत के दिन उसको लाया जाएगा, कहा जाएगा अपनी अमानत अदा कर, वो जवाब देगा कि दुनिया तो अब है नहीं, मैं कहाँ से अदा करूं। तो फिर उसको कहा जाएगा, फिर वो चीज जहन्नुम की तह में नजर आएगी और कहा जाएगा जाओ उसको लेकर आओ, और वो उसको अपने कंधे पे लाद के चलेगा, लेकिन वो गिर पड़ेगा, फिर लेने जाएगा, फिर गिर पड़ेगा, फिर इसी तरह अजाब में मुब्तला रहेगा। इब्ने कसीर में ये रिवायत है। तो अमानत छोटी बात नहीं होती, इसलिए बहुत ये भाग भाग करना, जी मुझे ये ओहदा मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। पहली बात क्या बताई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत के अमानत जो मांगे उसको ना दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हम उसको नहीं देते अमानते जो मांग के लेता है। आप इस चीज को छोड़ दें कि आज क्या हो रहा है, लेकिन इसका लालच करना कि मुझे दे दें, मुझे ये कर, पहले सोचना चाहिए ये फिर मेरे लिए अमानत होगी, और मैं इसको सही से अगर ना कर सकी ना इस काम को, तो अल्लाह के हाँ पूछोगी, कोई पूछे या दुनिया में या ना पूछे। मगर यहाँ पे ना ओहदे अच्छे लगते हैं इंसान को, टाइटल्स अच्छे लगते हैं, कोई नाम मिल जाना, जी ये फलां है, ये जो प्रेसिडेंट है, ये सीईओ है, ये ट्रेजरर है, ये फलां है, तो ये इंसान को अच्छा लगता है। आगे बाद में वो उसको पूरा करे ना करे काम को, काम किधर फेंका हुआ खुद को परवाह नहीं है, लेने के बहुत शौक होते हैं लेकिन काम करने का नहीं दिल करता फिर, तो ये मामूली बात नहीं है। जिसके हवाले जो मामला किया जाए या जिसके ऊपर जो जिम्मेदारी डाली जाए, एक तो वो उसका अहल होना चाहिए, नंबर टू क्या बात है, अब उसके ऊपर पड़ गई है ना जिम्मेदारी, अब उसको चाहिए कि वो अब इस जिम्मेदारी को पूरा करे। तो ये मुसलमानों को कहा जा रहा है असल में कि अल्लाह आपको हुक्म देता है कि आप अमानते सिर्फ अहल को दो, ना अहलों को ना दे दो। बात समझ आ रही है? ओ हमारे तो ना अहल ही भरे पड़े हैं, जब भी आज हमारे ये हाल है, जिन मुल्कों में बादशाहते हैं उन्होंने बादशाह देखें कौन से बैठे हैं जो ना अहल हैं। तो कहा गया मुसलमानों को नहीं दो ऐसे लोगों को अमानते हैं, तो मुसलमानों को ये एक इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। तो अब आप बताएं फिर, ये जो हम कहें कि कहाँ पे ये लिखा हुआ है कुरान के अंदर कि जी सिफारिश नहीं करनी किसी की, अगर किसी ने जॉब लेनी है तो सिफारिश नहीं कर सकते, अगर किसी ने जॉब लेनी है तो किसी को कहला नहीं सकते, और किसी की पोजीशन मैंने मार ली, तो ये इसमें कहाँ गलत लिखा हुआ है? अल्लाह ताला फरमाता है इन अल्लाह या अमूरुकुम, हुक्म देता है तुमको। वैसे तो सारा ही कुरान अल्लाह का ही हुक्म है, इन खास तौर पे जैसे कोई माँ कहे ना बच्चे को ये पानी ला दो, और दूसरा कहे मेरा हुक्म है तुमको कि तुम ले लेकर आओ, तो इसमें कितनी शिद्दत होगी बताएं। वा इदा हकम तुम बैन नासी अंतहकुमु बिल अदल, और जब तुम फैसला करो लोगों के दरमियान तो फैसला करो इंसाफ के साथ। अब देखें यहाँ पे वेस्ट में ना फैसले ज्यादातर कैसे किए जाते हैं, मसावात की बेसिस पे, कि सब इक्वल है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि बाप और बच्चा इक्वल है, बस वो तुम्हारा बाप है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तुम्हारा कोई कुछ तुम्हें कुछ कहे तो तुम अब खड़े होके उसके ऊपर कॉल कर लो पुलिस। तो ये है कि वो बराबर है तुम्हारे। इस्लाम कहता है नहीं, हकदार को उसका हक देना ये अदल होता है। हकदार को हक देना अदल होता है। अदल का मतलब ये नहीं है मसावात बराबरी, अदल का मतलब ये है कि जिसका जितना हक बनता है उतना ही उसको दो। अगर बाप है तो उसका उसके मुताबिक हक है, अगर बच्चा है बेटा है तो वो उसका बेटा होने के नाते बाप से कम है हक, बाप का ज्यादा हक है उसके ऊपर। हम बराबर नहीं कर देंगे दोनों को, सारे इंसान बराबर हैं। इस्लाम तो कहता है सा, वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है। अदल होता है हक वाले को हक देना, नहीं सारे ही हमारे बच्चे हैं हम तो सबको बराबर देंगे, जितनी हमारी विरासत है सबको बराबर बांटेंगे हम। अल्लाह ताला ने जितने भी अहकाम दिए वो अदल से हैं, ये नहीं कि हर एक को बस एक ही तरह से हक दिया जाए, नहीं, जिसका जितना हक बनेगा। तो इससे यहां पता चलता है कि जब भी फैसला करना हो, अब हम कहीं जज तो है नहीं, जज वगैरह के लिए अपने मुताबिक है कि वो अदल करें, इस बेस के ऊपर किसी के साथ तरफदारी ना करें कि वो किस मजहब से है, किस रंग का या किस नस्ल का है। आपके सामने अगर दो लोग आते हैं, एक काफिर है बुत परस मुशरिक है और एक मुसलमान है, आप किसके हक में फैसला करेंगे? आप ये नहीं देखेंगे या, ओ, ये तो मुसलमान है तो हमने तो इसके हक में करना है, चाहे जो मर्जी करो, है तो अल्लाह का नाम लेने वाला। नहीं, आपने कहना है कि अदल क्या है, इंसाफ क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक यहूदी का और एक मुनाफिक सो कॉल्ड तो मुसलमान ही था ना, उन दोनों का मुकदमा आया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक में फैसला दिया क्योंकि उसके हक में ही बनता था। तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए कि वो चूंकि मुसलमान है इसलिए हम उसके हक में, या कोई बहुत बड़े घर का है। अब वो औरत जिसने चोरी की थी वो बड़े खानदान की थी, तो सिफारिश क्या की गई कि इसका हाथ ना काटा जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात सुनी थी? फरमाया था फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो उसका भी हाथ काटा जाता, इससे बढ़ के क्या इंसाफ होगा? तो हर एक अपने लिए सोचे कि मैंने इंसाफ के फैसले करने हैं। तो हकूमती लेवल पे तो जहां पे कोई जज बैठा हुआ है, कोई काजी बैठा हुआ है, वो तो करेगा ही, लेकिन इसके अलावा भी घरों में बाज दफा फैसले करने होते हैं, आपके बच्चे ही आपके सामने आ जाते हैं और आपको फैसला करना पड़ता है। तो उस वक्त भी ये नहीं कि ये मेरा चहेता बच्चा है, ये मेरा कहना ज्यादा सुनता है। इंसाफ, कभी ऐसे हो सकता है कि एक तरफ आपकी माँ है एक तरफ आपकी भाभी है, इंसाफ। ये नहीं है कि भाई तो हमारी तो ये अम्मी है, आपकी बहन है और उसके आपके बहनोई है, तो अब भी क्या इंसाफ होगा? एक तरफ आपकी सास है एक तरफ आपके शौहर है, तब भी इंसाफ होगा? अल्लाह ताला ने आगे भी आप जाके पढ़ेंगे सूरह मायदा में कि कितनी ज्यादा अदल की बात की है, अदल के साथ किस्त इंसाफ के साथ फैसला किया जाए, चाहे वो कोई तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, फिर भी इंसाफ। इन अल्लाह निअम्मा याइदुकुम भी, अब जिस माशरे में इंसाफ होगा, जिस माशरे में उनके अहल को अमानते दी जाएंगी, वो माशरा कितना प्यारा होगा ना, उसमें किसी को ये नहीं होगा मेरे साथ जुल्म हो जाएगा क्योंकि मैं गरीब हूं। या बाज दफा पता है क्या होता है कि चलो जी बेचारा गरीब आदमी है तो छोड़ो इसको, इस तरह है वो गरीब है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उसके उसको आप जो चीज उसकी नहीं भी बनती या जो इंसाफ की बात नहीं है वो भी इसलिए उसको कर दें क्योंकि बेचारा गरीब है। बाज दफा ऐसे भी होता है, बाज दफा गरीबों के साथ उस तरह से जुल्म होता है, लेकिन बाज दफा ये भी होता है कि चूंकि ये गरीब है तो छोड़ो जी इसने अगर चोरी भी कर ली, छोड़ो जी इसने अगर ये भी कर ली। इन अल्लाह निअम्मा याइज़ुकुम बिह का मतलब यही है कि अल्लाह तुम्हें कितनी अच्छी नसीहत करता है, ये कितनी अच्छी बात की तुम्हें नसीहत की जा रही है क्योंकि इससे सारा माशरा पुरसकून हो जाता है। ये चीजें हैं जो तरक्की करने की हैं। हम सोचते हैं हमारी तरक्की इसके अंदर है कि बस हम लोगों की कॉपी कर लें, वो उन्होंने पता नहीं इसी तरह तरक्कियां की होंगी, छोटे कपड़े पहन के, जुबान के ऊपर गालियां दे के, कानों में बालियां पहन के, या नाच गा के, यही उनकी तरक्की के राज हैं, तो हम भी यही कर लेंगे, हम भी तरक्की याफ्ता हो जाएंगे। नहीं, असल बात यह है कि जब तुम ये काम करो तो ये है तरक्की के काम के, तुम मानते उनके अहल को दो और इंसाफ कायम करो माशरे में, छोटी से छोटी जगह और बड़े से बड़े महकमे में इंसाफ होना चाहिए, चाहे वो जॉब्स देने का हो, चाहे वो माँ बाप हैं जो घरों के अंदर कर रहे हैं बात किसी से, वो भी इंसाफ की करें। इन अल्लाह कान समीअन बसीरा, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला है और देखने वाला है। अल्लाह देख भी रहा, सुन भी रहा, जो जो भी कोई कर रहा है। बहुत सारी चीजें अंडर हैंड होती हैं, इंसान सोचता है किसी को क्या पता चला, अल्लाह को तो पता है। या ये अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल, ए ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। देखें जब इंसान के अंदर ईमान होता है ना, ईमान, तो ईमान जितना स्ट्रोंग होता है अल्लाह और रसूल की इताअत उतनी ही ज्यादा इंसान बढ़ के करता है। ईमान आने के बाद जो पक्का सच्चा ईमान होता है ना, उसके बाद इंसान समयाना व अताना कहता है, मैंने सुन लिया, मैंने मान लिया। वो ईमान आने के बाद फिर तरद्दुद नहीं रहता कि पता नहीं करना भी है मुझे कि नहीं करना, पता नहीं मैं सोचती हूँ, पता नहीं मैं मशवरा करती हूँ, पता नहीं सही भी है कि नहीं सही। नहीं, ईमान आने के बाद लाजमी है कि ईमान के फ्रूट्स में से क्या है, ये बीज अगर ईमान का डालेंगे ना, इसका फ्रूट क्या निकलेगा, इताअत अल्लाह और रसूल की। हमारी जब इताअत में कमी होती है, वो इस वजह से कि ईमान में कमी है, ईमान में कहीं गड़बड़ है। सहाबी है, रसूल है, हम तो आज ये पूछते ही रह जाते ना, आओ अच्छा कुरान में है कि हदीस है, अच्छा हदीस है तो फिर छोड़ें। जब के सहाबी है रसूल मस्जिद में एंटर हो रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज कान में पड़ती है, बैठ जाओ। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में किसी को कह रहे थे बैठ जाओ, अब उन्होंने ये नहीं पूछा मुझे बैठने को कह रहे हैं कि किसी और को कह रहे हैं, बैठूं कि ना बैठूं, अब यहां पे तो कोई जगह ही नहीं बैठने की, चलो अंदर जाके देखता हूं। वो जहां थे वो वहीं बैठ गए, बाद में किसी ने पूछा आप क्यों यहां बैठे, पर हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, तय वो तो उनको कह रहे थे, लेकिन इनके कान में बस इतनी बात पड़ी बैठ जाओ, इतनी इताअत थी उनकी। वो इस तरह से नहीं हमारी तरह करते थे, हदीस है कि कुरान है, अच्छा फिर सोचेंगे तो फिर करेंगे, अच्छा फिर पता नहीं कितनी कितनी सोचों में पड़ जाते हैं कि जिंदगी भर सोच ही खत्म नहीं होती हमारी। तो इताअत करो अल्लाह की और रसूल की। इसके बाद जो मुनकरीन हदीस है, मैं आपको इसलिए हमेशा बताती रहती हूँ कि ये लोग बहुत एक्टिव हैं और मुसलमानों के अंदर ही मौजूद हैं, और खास तौर पे यूथ को बहुत टारगेट करते हैं, हदीस को नहीं मानते, कहते हम तो बस वो ही मानेंगे जो कुरान में है, या वो हदीस जो कुरान के मुताबिक हो रही हो वो मानेंगे। पता नहीं इन्होंने खुद ही हदीसें बना ली हैं, 200 साल बाद लिखी हैं, या बहुत कॉमन सुनेंगे। आज ऐसा वक्त नहीं है, आज तमाम हदीस के ऊपर इतनी स्टडी, इतनी रिसर्च हो चुकी है कि अगर किसी ने कोई हदीस घड़ी है तो मौजूआत, जो मौजू अहादीस हैं, वो अलग कर दी गई हैं। आज कोई कंफ्यूजन नहीं है, फिर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहते हैं हाँ हमें क्या पता, हमें क्या पता कि ये हदीस है तो पता नहीं खुद ही बनाई भी हो किसी ने। नहीं, ऐसा नहीं है आज, तो कोई किसी को पागल नहीं बना सकता। इसलिए याद रखें हदीस पे अमल करना भी उसी तरह जरूरी है जैसे कुरान पे अमल करना, अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल है, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत असल में अल्लाह ही की इताअत है, वही होती है रसूल है। फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कुरान में उसने अल्लाह की इताअत ही की। तो ये मुनकरीन हदीस इतना प्रोपोगेंडा करते हैं ना, और जेनों में डालते हैं कि नहीं हदीस कोई चीज नहीं, तो फिर वो इस आयत पे कैसे अमल करेंगे, अती और रसूल पे कैसे अमल करेंगे, ये तो बताएं। और यहाँ पे एक तीसरी बात भी है, वह उलिल अमरी मिनकुम, और जो साहिब इख्तियार हैं तुम में से उनकी भी बात माननी है। लेकिन अती ऊ का लफ्ज आप देखें अल्लाह के साथ है और रसूल के साथ है, उलिल अमर के साथ नहीं है, क्या इससे डिफरेंस पड़ता है। अगर होता शुरू में सिर्फ अती उल्लाह व रसूला व उलिल अमरी मिनकुम तो अती सब के साथ होता, लेकिन यहां पे अती ऊ दो के साथ है और एक के साथ नहीं। इससे पता चलता है कि अती ऊ पहला और दूसरा, यानी अल्लाह की भी और रसूल की इताअत मुस्तकिल होगी, हमेशा होगी, हमेशा हर अफेयर में, और अनकंडीशनल होगी, जबकि उलिल अम्र की इताअत अनकंडीशनल नहीं होगी, उनकी कंडीशनल इताअत है, कंडीशनल मशरूत इताअत है, यानी शर्त है उसमें। शर्त क्या है कि वो अल्लाह और रसूल की बात के अंदर रहते हुए कोई बात कह रहे हैं, उनके अगेंस्ट नहीं जा रहे, यही बात, तो उलेल अमर की तब माननी है। अब उलेल अमर होते कौन है? अब मैंने आपको कहा साहिब इख्तियार, इसका मतलब क्या साहिब इख्तियार? मतलब है जो भी इंचार्ज है, जिनके पास भी अथॉरिटी है। कहाँ की अथॉरिटी? कहाँ की अथॉरिटी है? जिस जगह पे भी आप हैं, मसलन है आप किसी मुल्क में हैं, वहां पे अथॉरिटी किसकी है? जो भी हुकूमत है उसकी अथॉरिटी है, किसी गवर्नर की है। जब आपका कोई मामला किसी मजलिस का आता है, मिसाल के तौर पे आप किसी क्लास में आए हैं, वहां पे अथॉरिटी किसकी है? टीचर की है। आप किसी इदारे में गए हैं, वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी अथॉरिटी है। आप किसी मजलिस में गए हैं, वहां पे जो मजलिस के मुंतजमीन है, जो उनकी मैनेजमेंट है, वो उनके पास अथॉरिटी है। जिस जगह पे भी आप हैं ना, आप वहां की जो अथॉरिटी है, वहां जिसके पास भी इख्तियार है, जो भी साहिब इख्तियार है, उसकी बात को माने, मगर एज लॉन्ग एज वो अल्लाह रसूल की बात के अंडर ही बात कर रहे हैं, उससे बाहर नहीं कर रहे हैं। अब इसकी क्यों ये यहाँ पे इतना जरूरी है? इसलिए ये इसी से सिस्टम चल सकता है। अगर हर बंदा खड़ा होकर ये कहे मैं नहीं मानता, ये कौन होते हैं हमें हुक्म देने वाले? अपना काम करें, हमारी तो जो मर्जी होगी हम करेंगे, हम अल्लाह रसूल की मानते हैं, हमने इनकी नहीं माननी, क्योंकि ये हमारे पसंदीदा कैंडिडेट नहीं थे, क्योंकि वो फलां वो बन गया है, वजीर बन गया, जिस जिस मुझे नहीं पसंद था, मैंने तो नहीं इसको वोट दिया था, तो हमने नहीं माननी। नहीं, यहाँ पे कहा गया नहीं, आपको उनकी इताअत करनी है दायरे में रहते हुए, जहां पे अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक वो कोई बात कर रहे हैं। तो मसलन मिसाल के तौर पे, मसलन है एक जगह पे वो कहते हैं, एक हुकूमत ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन होगा। अब वो कहें हमने तो नहीं मानना, हम तो इस हुकूमत को मानते ही नहीं है। अब वो लॉकडाउन के खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं, वो वहां पे कहा जाए किसी जगह पे आपने मास्क पहन के आना है, आप कहें नहीं नहीं जी हम तो नहीं मास्क पहनते, हमें तो नहीं ये पसंद है। और कहां, कोई कुरान में लिखा हुआ ये, कोई हदीस है ये, हम तो नहीं मानेंगे। ठीक है ना, अब हमें कई बातों की ना पता ही नहीं होता। अब यहाँ पे कहा गया जो भी अथॉरिटी है, मसलन है कि अमनो अमान की कोई बात है, आज आपको कह दिया जाए भाई फलां जगह पे अमनो अमान के लिए हमने ये चीजें की हैं, तो आपने इनको फॉलो करना है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसके तहत ये काम किया गया। आप कहें हम तो पुलिस को मानते ही नहीं, हम तो पुलिस को कुछ समझते ही नहीं, ये तो सारे बेईमान है, हमने नहीं इनकी माननी, तो ये तो फिर नहीं सही। आपको कहा जाए आपने रात के बाद इतने बजे के बाद अपने घर से नहीं निकलना, अब आप बगावत पे उतरे में, तो ये कहीं पे भी, अब ये सिर्फ हुकूमतों की बात नहीं है, उलिल अमर कहीं के भी हैं, वहां के आपने बात को मानना है। जिसके पास भी अथॉरिटी, आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं, वो कहते हैं आप लाइन में खड़े हो, आप कहते हैं नहीं जी मैं तो नहीं लाइन बनाती, हमें तो ये पसंद ही नहीं है लाइन बनाना, हम तो नहीं बनाएंगे लाइन। ऐसा नहीं होता मुसलमान, वो उलिल अमर की भी इताअत करता है। अब उन्होंने अपने कोई रूल्स रखे होंगे अपने किसी, जाहिर अपने सिस्टम को चलाने के लिए। अब वो आपको एक जगह बिठाते हैं, आप यहां बैठे, आप कहते हैं यहाँ पे मुझे नहीं पसंद है बैठना, ये नहीं होता। बात समझ आ रही है ना कि कैसे उलिल अम्र की इताअत होगी? क्योंकि आपको अतीउल्लाह तो समझ आ गई, अतीउ रसूल भी समझ आ गई, कुरान को भी मानना है, हदीस को भी मानना है, इसकी इताअत करनी है, कुछ को भी वो नहीं कह सकते कि ये हदीस है तो इसको हम कुछ भी ना समझे, और उलिल अम्र की भी कैसे इताअत करनी है आपने वो भी समझ आनी चाहिए। अब इसके अंदर एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि जब कोई उलिल अम्र ऐसी बात का हुक्म दे दे कि जो अल्लाह रसूल की बात के खिलाफ है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आपने एक बंदे को बना के भेजा अमीर, अब अमीर की भी हुक्म मानना जो है ना वो भी लाजमी होता है, जो जिसको अमीर बनाया जाता है, इंचार्ज बनाया जाता है। आपकी कोई ग्रुप इंचार्ज है, आपकी कोई वो इंचार्ज है, वो आपके इन कामों की इंचार्ज है, ये नहीं कि आपकी पूरी जिंदगी की वो इंचार्ज हो गए, लेकिन उस काम, उस स्पेशल डिपार्टमेंट, उस स्पेशल फील्ड में वो इंचार्ज है। अब वो कोई बात कह रहे हैं आप मानने को ही तैयार नहीं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे को भेजा अमीर बना के कुछ लोगों का, ठीक है। अब उस वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उसको भेजा अमीर बना के, तो उसने आगे से सहाबा को ये मैसेज दिया, ये कहा कि लकड़ियां लेकर आओ और आग जलाओ। जब उन्होंने आग जला दी तो उसने कहा कि आग में कूद जाओ। अब सहाबा जो थे वो थोड़े वो हुए कि एक उनमें से बोले कि लोगों सुनो, आग से बचने के लिए ही तो हमने इस्लाम कबूल किया, अब हम क्या आग में कूद जाएं? तो वो थोड़े मुतजबजब हुए, उन्होंने कहा हम जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेते हैं, अगर आप कहते हैं कि हाँ यही करना है, क्योंकि अमीर की इताअत होनी चाहिए, तो तुम्हें इसका कहना ही मानना है, तो फिर हम कूद पड़ेंगे। अच्छा, जब वो आए और उन्होंने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया कि ऐसे वाकया हुआ है, तो आपने फरमाया अगर तुम आग में कूद पड़ते ना, तो हमेशा की आग में जलते रहते। सुनो, फरमाबरदारी सिर्फ मारूफ में है, ठीक है? यानी सिर्फ वो बात जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के अंडर हो उसमें है। जब कोई अल्लाह रसूल के हुक्म के अगेंस्ट कोई बात कर रहा है, तो उसको नहीं मान लेना कि हाँ हम मान गए। अब किसी मुल्क में गे मैरिजेस अलाउड हो जाती हैं, किसी मुल्क के अंदर वो कह रहे हैं कि हिजाब ही नहीं ले सकते, अब किसी मुल्क में, तो अब ये नहीं कि अब उन्होंने कह दिया हिजाब नहीं ले सकते तो सारे हिजाब उतार के फेंक दें, नहीं। बात फिर माननी वो वाली है जो अल्लाह रसूल के हुक्म के अंडर, और ऐसे मुल्क हैं जहां पे हिजाबों पे पाबंदी है, आपने पार्लियामेंट में हिजाब नहीं पहन के जा सकती कोई औरत, तो उस जगह पे नहीं माननी। अगर बाकी जगहों पे जैसे वो आम अहकाम दे रहे हैं, उसको आपको मानना है। वो कहते हैं आप इनकम टैक्स दें इतना, आपको मानना है। वो कहते हैं ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं, ये इसकी शरायत है, तब आपको ये चीज मिलेगी। आप कहते हैं कि हाँ ये मैं शरायत पूरी करती हूं, आप उनके हुक्म मानते हैं। वरना हर कोई बंदा कहना शुरू कर दे मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता, तो वो उस मुल्क का हाल क्या होगा, उस जगह का क्या हाल होगा? मनमानियां ही करेंगे हर कोई। कोई कहेगा मैं इस वजह से नहीं मानता, कोई कहेगा मैं उस वजह से नहीं मानता, मुझे ये पसंद नहीं है, कोई कुछ कहेगा। क्या होगा उस मुल्क का हशर, जैसे हम अपने देख ही लें हमारे यहाँ जो हालात हैं। फइन तनाजा तुम फी शैइन, फिर अगर तनाजा हो जाए तुम में किसी चीज में भी, किसी चीज से, चाहे दीन में हो चाहे दुनिया की कोई बातों में हो जाए, फरुद्दूहू इलल्लाहि वर रसूल, तो क्या करो, फेर दो उसको अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ। यानी जब जाहिर इंसान इकट्ठे रहते हैं तो इख्तलाफ भी हो जाते हैं, ये करें नहीं करें, या एक बंदा कहता है ये चीज ठीक है, दूसरा कहता है ये ठीक नहीं है, अब फैसला कौन करेगा? फैसला अल्लाह और उसके रसूल की तरफ फेर दो, यानी कुरान की तरफ आओ, हदीस की तरफ आओ। इन कुन तुम तुमीनूना बिल्लाही वल यौमिल आखिर, अगर तुम वाकई ईमान रखने वाले हो ना अल्लाह और आखिरत के दिन पर, तो तुम इन चीजों की तरफ आओ, कुरान से रुजू करो, हदीस में देखो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये बात आई थी तो आपने क्या किया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मामले के अंदर किसी ने ऐसा पूछा था, तो आपने इसका क्या फैसला सुनाया था? चाहे कोई झगड़ा हो जाए, चाहे कोई हकदारों को हक देने का मामला आ जाए, कोई कह रहा है मेरा हक बनता है, दूसरा कहता है नहीं मेरा बनता है, कैसे फैसला करेंगे? इस तरह से करेंगे, ठीक है? और ये इस शर्त के साथ बताया गया, अगर वाकई तुम ईमान रखते ना, यानी तुम्हारा ईमान की के ऑथेंटिक होने का पता इससे चलता है कि तुम अपने तनाजों में कुरान और हदीस की तरफ आओ। फिर बेस क्या हुई, सोर्स क्या हुई बताएं, कुरान और हदीस? और कुछ लोग कहते हैं नहीं कुरान और हदीस काफी नहीं है, जब तक कि हम और चीजों को ना बीच में ले आए, जबकि यहाँ पे किसी और चीज को नहीं लाया गया, कुरान और हदीस। इन कुन तुम तो मीनू बिल्लाही वल यौम आखरत के दिन पे, और अल्लाह पे तुम्हारा ईमान अगर है ना वाकई, तुम कहते हो ना तुम ईमान वाले हो, तुम अपने आप को ईमानदार समझते हो ना, तो फिर तुम्हें किस तरफ देखना होता है जब भी कोई तनाजे खड़े हो जाए? अब शौहर कहता है मेरा ये हक है, बीवी कहती है नहीं मेरा हक है, तो फिर कहाँ से जाके फैसला कराएंगे? यहां से। ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला, तो ये बेहतर भी है और ज्यादा अच्छा भी है नतीजे के एतबार से। नतीजा इसी का बेहतरीन निकलेगा कि अल्लाह रसूल की बात को मान लिया जाए और उसके थ्रू अपने मसलों को हल किया जाए। आप अपने बच्चों के दरमियान कोई फैसले करना चाहते हैं, कोई इख्तलाफ हो गया है, आप अपनी जॉब पे कोई चीजों का झगड़ा हो गया उसमें करना चाहते हैं, आपने कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला करना, इसको बेस बनाना है। अब ऐसे बोल लोगों की बात की गई जो इसको बेस नहीं बनाते हैं, वो कहीं और जाते हैं, किसी और को ढूंढते हैं, उनकी बात की गई। तो ऐसे सब लोग जो ऐसा करते हैं कि भाई कुरान और हदीस का, तो उनको इसलिए नहीं वहां पे आते, उस तरफ आते कि उनको लगता है कि पता नहीं वहां पे तो कोई स्ट्रिक्ट ही फैसला आ जाएगा, इसमें तो बड़ी स्ट्रिक्टनेस है, यहाँ पता नहीं हमसे कोई शायद अल्लाह माफ करेगा हमारा कोई हक मार लेगा इस्लाम, तो वो इस तरफ नहीं आते। फिर उनका क्या है, वो अपने तनाजों के फैसले कहीं और से कराना चाहते हैं। अभी तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया ना, लेट्स सी कि वो लोग कैसे हैं, उनके बारे में क्या कहा गया। अब यहां से ना आपको पता चलेगा कि एक वो अहले किताब का जो बात थी ना वो खत्म हो गई है, और ऐसे लोगों की बात शुरू हो गई जो खुद तो अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन वो कैसे मुसलमान है, वो कैसे मुसलमान है कि जो जिनके लिए रसूल की इताअत मुश्किल है। आपको पता है वो कौन थे? मुनाफिकीन। मुनाफिकीन नमाज भी पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे, मस्जिदों में आते थे, लेकिन रसूल की इताअत उनके ऊपर बड़ी भारी थी, वो करना नहीं चाहते थे। कहते थे कुरान की बात मांग लेंगे, रसूल की बात नहीं हमने माननी। अब इनकी आप बातें कुछ सुनने में आपको आएंगी आगे आगे, ये इनका जिक्र आपको मिलेगा कि ये आप क्या करते थे। अलम तरा इल्लदीना, क्या देखा नहीं तुमने उन लोगों की तरफ, यज़ुमून, उनको ज़ोम है, यानी दे थिंक उनके दिमागों में ये बात है, एक्चुअली है नहीं, लेकिन उनको लगता यही है, वो दावा यही करते हैं। अन्नहुम आमनू बिमा उन्जिला इलैका वमा उन्जिला मिन कबलिका, कि वो ईमान लाए उस पर भी जो आपकी तरफ नाजिल हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया जा रहा है ना कि आपने उनको देखा जो ये कहते हैं कि हम उस पे ईमान लाए जो आप पे नाजिल हुआ, यानी वो क्या है, कुरान। वमा उन्जिला मिन कबलिका, और उस पे भी ईमान लाए जो आपसे पहले नाजिल हुआ, यानी वो दावा इस्लाम का कर रहे हैं कि हम कुरान पे भी ईमान लाते हैं, हम पिछली किताबों पे भी ईमान लाते हैं। और फिर उनके हाल क्या हैं, उनके तरीके कैसे हैं, मैंने उनके पर हैरत की गई कि मुंह से तो ये कहते हैं कि हम ईमान लेकर आए हैं जो आप पे नाजिल हुआ, जो आपसे पहले नाजिल हुआ, लेकिन हाल क्या है, युरीदून अन यतहाकमू इल तागूत, वो चाहते हैं कि वो फैसले ले जाएं तरफ तागूत के। तागूत वो कुव्वतें, वो ताकतें, वो सोच, वो इंसान, वो माशरे, वो हकूमत, वो काजी, वो जो अल्लाह की हदों से निकल गया हो, वो तागूत कहलाता है। ठीक है, जो हदें तोड़ चुका हो वो तागूत है, यानी ऑपोजिट, बिल्कुल अल्लाह की बात के बिल्कुल ऑपोजिट। वो चाहते हैं कि वो फैसले ले जाएं तागूत की तरफ। वक़द उमीरु अन यकफुरु भी, जबकि उनको कहा गया, उनको तो ये कहा गया था कि तागूत का आपने इनकार करना है, तागूत को नहीं मानना, ये वो कैसे मुसलमान है, यानी उनका कैसा इस्लाम है, दावे ईमान के और झगड़े अपने तागूत के पास ले जाना चाहते हैं। ये बताया जा रहा है कि हैरत है ऐसे लोगों के ऊपर कि जो ऐसा करते हैं। अच्छा, अब इसके पीछे ना एक वाकया भी है जो कि आपको तफासीर में मिल भी जाएगा कि दो आदमियों में झगड़ा हुआ। एक जाना चाहता था काब बिन अशरफ के पास और दूसरा कहने लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला करा लेते हैं। काब बिन अशरफ यहूदियों का सरदार था तो उसके पास जाना चाहता था। दूसरा एक और भी वाकया आता है कि जिसके अंदर एक आदमी जो खुद को मुसलमान कहता था, मुसलमान कहलाता भी था वहां पे, मुनाफिक था, मगर वो एक यहूदी के साथ किसी बात के ऊपर झगड़ पड़ा तो उसने यहूदी से कहा कि चलो काब बिन अशरफ के पास चलते हैं, वो फैसला करे। और यहूदी कहने लगा कि नहीं, नबी अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं। हालांकि आप देखेंगे मुसलमान तो ये था, इसको कहना चाहिए था कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं, लेकिन उल्टा हुआ क्योंकि ये सोचता था कि काब बिन अशरफ को रिश्वत वगैरह देकर और मैं अपने हक में फैसला करा लूंगा। और जो यहूदी था वो जानता था कि मैं हक पे हूं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक का ही फैसला करेंगे, लिहाजा वो कहता था कि नबी अलैहिस्सलाम के पास चलें। तो जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यहूदी के हक में फैसला दे दिया। और ये भी आता है कि बाद में वो हजरत उमर के पास गए थे और उसके बाद वो आगे वाली आयत के शान नजूल में आता है, लेकिन ये वाकये में जो बाद में बात आती है कि उस मुसलमान ने फिर उसके बाद कहा कि हम चलो हजरत उमर के पास क्यों ना चलें, क्योंकि हजरत उमर, उसने सोचा कि वो तो बड़े स्ट्रिक्ट हैं और वो जब देखेंगे कि मैं मुसलमान हूं तो वो मेरे हक में फैसला करते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक में फैसला दे दिया था लेकिन वो मुतमईन नहीं है, और वो जाते हैं हजरत उमर के पास और हजरत उमर जो है फिर वो उनको यहूदी कह देता है कि वैसे तो हम आपके पास आए हैं लेकिन बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला दे चुके हैं मेरे हक में। तो हजरत उमर अंदर गए, तलवार लेकर आए और उसको मुनाफिक का सर कलम कर दिया। तो लेकिन ये तफसीरों में मिल तो आपको जाएगा मगर इसकी सनद जो है ना वो ज़ईफ़ है। सनद इसकी जईफ है, ये मैं साथ बस बता दूं आपको। तो यहां पे हमें पता चला एक बात जो अल्लाह ताला को ने जो फरमाया कि ऐसे लोग हैं जो दावा तो करते हैं ईमान का कि हम तो कुरान पे ईमान लेकर आए, और ऐसे, और इनका हाल क्या है कि ये जाते हैं अब इनके पास ताहूत के पास कि वो इनके फैसले करें। वह युरीदु शैतानु अन युदिल्लहुम दलालम बईदर, शैतान तो ये चाहता है कि इनको बहका के दूर डाल दे। यानी ऐसे लोगों का हाल क्या है उनके बारे में ये आयत नाजिल हुई है कि जो दावे इस्लाम के करें और उनको इस्लाम के फैसले कबूल नहीं है, नहीं चाहते कि इस्लाम हमारे दरमियान फैसले करें, वो चाहते हैं कि कहीं औरों से फैसले कराएं। और ये उन सब के लिए ट्रू है जहां पर भी इस्लामी अदालतें भी हैं और दूसरी अदालतें भी साथ ही हैं। और लोगों को ऐसे लगता है कि अगर हम इस्लामी अदालत में चले गए, अगर शरीयत के मुताबिक हमारे साथ फैसला हुआ ना, तो फिर बड़ा स्ट्रिक्ट फैसला कोई हो जाएगा, लिहाजा वो ताहूत के पास जाते हैं, दूसरी अदालतों के पास जाते हैं, वहां से फैसले कराते हैं। आज आप देखें इन मुल्कों में, जहां पे भी कोई गैर इस्लामी मुल्क में कोई भी रह रहा है, वहां पे अव्वल या तो इस्लामी अदालतें ही नहीं, या फिर इस्लामी अदालतें पैरल में हैं लेकिन बहुत से लोग नहीं चाहते वहां जाना। खास तौर पे बाज दफा औरतों को यहाँ की अदालतें बहुत सारी वो फेवर्स या वो फायदे दे रही होती हैं जो के इस्लामी अदालत के अंदर जाएंगे तो नहीं मिलेंगे। डाइवोर्स के मामलात हैं, कस्टडी के बाज दफा मामलात होते हैं, तो उसमें जो उनको लगता है कि इस्लामी अदालत फैसला करेगी वो तो हमें पसंद नहीं आएगा, तो वो उसको छोड़ के दूसरों के पास जाना प्रेफर करते हैं। तो ताहूत से वफादारी और इस्लाम जिसके ऊपर कहते हैं हमारा ईमान है उससे कराहत, ऐसे लोग तो मुनाफिक ही हैं। इसके बावजूद फिर खुद को हम कहते हैं कि हम बड़े पक्के मोमिन हैं, जबकि अगर हमें इस्लाम के कोई फैसले ही पसंद नहीं आते, बस शैतान तो चाहता ही ये है कि बहका दे इनको दूर। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, और जब ऐसे लोगों को कहा जाता है ना, देखो अल्लाह का हुक्म तो ये है, रसूल का हुक्म तो ये है, तआलौ इधर को आओ, यानी तुम ये मानो, رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا, तो तुम देखोगे मुनाफिकों को वो रुकते हैं, रुक जाना, कतराते हैं, डरते हैं, उनको लगता है हमारा मफाद यहाँ पे मफाद को ठेस पहुंचेगी, वो अपना नुकसान नहीं चाहते, अल्लाह का फैसला यहीं पर पड़ा रहे, ये बस किताबों के लिए है, यह बस कुरान में पढ़ने के लिए है, इसके अलावा नहीं है, हम अपनी जिंदगियों में क्यों लाएं। हालांकि अगर ईमान होता तो इनको वो फैसले कबूल ना होते, समय ना वता ना करने वाला होता है ईमान वाला, पहली बात ही कही अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल। फकैफा, तो किस तरह, इदा असाबत मुसीबत बिमा कद्दमत अयदीहिम थुम्मा जाऊका, कैसे होता है कि जब ये इनके ऊपर फिर कोई मुसीबत पड़ती है ना, इनके अपने हाथों की वजह से, इनकी अपनी कमाइयों की वजह से, तो भागे आ जाते हैं आपके पास, आके कहते हैं, कस्में खाते हैं बिल्लाही अल्लाह की, इन अरदना इल्ला एहसान व तौफीका, कि हम तो, हमारा तो इरादा कुछ और नहीं था, एहसान का था और बाहमी मुआफ़त का था, हम उनकी अदालतों में सिर्फ इसलिए गए। हालांकि आपको पता है जब नबी अलैहिस्सलाम मदीना में आपको यानी लीडर माना गया था, आपको सरदार माना गया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ लीडर ही वहां पे और चीजों के लिए नहीं थे बल्कि काजी भी थे, आपके पास फैसले आते थे, और ये जो मुसलमान है यही अगर कतराते हैं, जो कहते हैं हम इनके ऊपर ईमान लाते हैं, उन्हीं को आपका फैसला कबूल नहीं, तो ये कैसे मुसलमान है फिर, यानी ये हैरत की गई। अब आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिंदा नहीं, लेकिन आज भी जो आपके फैसले हैं वो तो मौजूद है ना, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बता दी वो तो है ना। मिसाल के तौर पे हम देख लें, अब जितने भी अभी तक हम बातें पढ़ते आए हैं या अहादीस में हम सुनते हैं, उसके बाद कितने लोग हैं जो उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको एक्सेप्ट करके कहते हैं हाँ हम भाई, हमें ये जो विरासत के है ना बिल्कुल हमें कबूल है, और ये जो मियाँ बीवी के हकूक बताए गए ये भी बिल्कुल हमें कबूल है, और हमें इसके अंदर कोई मसला नहीं है, या वो भाग भाग के उधर जाते हैं, और जब इनके पर मुसीबत पड़ जाती है उनके अपने हाथों की वजह से, तो यहां से क्या पता चला कि मुसीबतें पता है क्यों आती हैं? इंसान के अपने करतूतों की वजह से आती हैं, अपने गुनाहों का नतीजा होती हैं। अब वो चाहे वो वाकया उसके उसमें जोफ है, लेकिन वो भी तो देखें, वो आदमी कत्ल हुआ किस वजह से? अपने अमल की वजह से। तो बता दिया गया वो मुखलिस नहीं है, वो पक्के मुसलमान नहीं है, उनका ईमान नहीं है, वो मुनाफिक हैं जो ऐसा करते हैं। और ऐसे लोगों पे जब मुसीबतें आती हैं तो फिर भागे आ जाते हैं, फिर कस्में खाते हैं, नहीं, हम तो बस ये चाहते थे, हम तो हर तरफ से बस चाहते हैं उनके साथ भी हम अच्छा रखें, मुआफ़कत रहे उनके साथ, हम अच्छी तरह सॉल्व करना चाहते हैं ना, हम चाहते हैं सर भलाई के साथ मामलात होने चाहिए, एहसान हम चाहते हैं। वो हमारा इरादा कोई ये थोड़ी था कि हमने आपके खिलाफ कोई फैसला कराना था, नहीं भाई, हम तो सुलह सफाई चाहते हैं, सबको सुलह सफाई के साथ रहना चाहिए। यही तो मुनाफिकीन का होता है ना काम, उलाइकल्लदीना यालमुल्लाहु फी माफी कुलूबिहिम, ये वो लोग हैं अल्लाह को पता है जो इनके दिलों में है। असलियत ये नहीं है कि ये सुलह सफाई चाहते हैं, असलियत ये कि इनको अपना मफाद प्यारा है। फारिद अनहुम, तो एराज करें आप इनसे, वाइज हुम, और इनको वाज करें, वकुल लहुम फी अनफुसिहिम कौलम बलीगा। तीन बातें बताई गई कि जो मुनाफिकीन के साथ, ए नबी आपने कैसा रवैया रखना, जिनका इवन ये पता चल गया कि ये मुनाफिक है, हम तो जिनका हम तो जान नहीं सकते कोई मुनाफिक है, हम जिनको नहीं भी पता उनके साथ भी ऐसा रवैया नहीं रखते, उनके साथ भी ऐसी बात नहीं करते। क्या फरमाया, ए नबी फारिज अन, उनसे दरगुजर करें, इग्नोर करें उनको, जाने दें, जिसको हम कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, दफा करें इनको, एराज करें। ठीक है, हम क्या करते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, जरा लाओ तो सही, मैं जरा इसकी खबर लेती हूँ। दूसरा क्या कहा गया, वाइज हूं, वाज करें उनको। वाज कौन सी नसीहत होती है, जो दिल में उतर जाने वाली हो, दिल को नरम कर देने वाली हो। हम इसकी जगह हम क्या करते हैं, झगड़ा शुरू कर देते हैं। वाज क्या करना है, वाज की तो उसको समझ आएगी ना जो उसके दिमाग कूल होगा, वो किसी को नसीहत करेगा। अब ये किसी की मुनाफत खुल जाए तो तब ये कहा जा रहा है कि ए नबी आप ये करें, चाहे आपको पता चल भी गया कि ये मुनाफिकीन है, ये काम करते हैं, ये वहां जा जाके फैसले करा रहे हैं। और कितनी शर्म की बात है कि कहते हैं हम कुरान पे ईमान लाते हैं, आप पे ईमान लाते हैं, लेकिन आपको इस काबिल नहीं समझते कि आपसे फैसला कराएं। आज भी ईमान अल्लाह पे है, रसूल पे है, अल्लाह के कानून पे है, इस कुरान पे है, लेकिन पसंद वो फैसले आते हैं जो दूसरी अदालतें करती हैं। वकुल लहुम फी अनफुसिहिम कौलम बलीगा, है नबी आप इनसे ऐसी बात करें जो दिल के अंदर पहुंच जाने वाली हो। वो पता है इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन मुनाफिकीन का पता भी चल गया था, हजरत उमर कई दफा ये बात आती है कि उन्होंने फरमाया कि या रसूल आप मुझे हुक्म दें तो मैं इस फलां मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं, तो आप फरमाते थे नहीं, लोग कहेंगे कि ये अपने साथियों को मरवा देते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने उनको ताने नहीं दिए और ना ही उनसे बातचीत करना छोड़ दी, ना उनका मजाक उड़ाया, ना उनको जली कटी सुनाई, ना उनको बुरा भला कहा, बल्कि ये तीन काम किए। और ये कितने हौसले के काम है कि अब्दुल्ला बिन उबई जैसा रईसुल मुनाफिकीन, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी के ऊपर इतनी बड़ी तोहमत लगा दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसके साथ भी क्या रवैया था। ये जब वो फौत हुआ था तो उसको अपनी कुर्ता दिया था, उसके बेटे ने जो पक्के सच्चे मुसलमान थे, उन्होंने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिक्वेस्ट की थी, तो आपने अपना कुर्ता मुबारक दे दिया था, नमाज जनाजा पढ़ाने चले गए थे, और जिंदगी में वाज करते रहे, उनको नसीहत करते रहे। अल्लाह हू अकबर। ना ही कभी उनको ये कहा कि तुमने तो मेरे से फैसले नहीं कराए थे ना, अब मेरे पास आने की क्या जरूरत है, जाओ तुम जाके कहीं और बैठो, तुम्हारा तो ईमान ही नहीं है। कितनी मुश्किल काम है ना ये करना। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, देख लें अब यहाँ पे तो बात ही सारी खत्म हो गई इसके ऊपर तो बात आ गई। हमने नहीं भेजा कोई भी रसूल मगर एक काम के लिए, सिर्फ एक चीज के लिए भेजा है सिर्फ रसूल, और वो है कि उसकी इताअत की जाए अल्लाह के इज़न के साथ। रसूल सिर्फ ये राग अलापने के लिए नहीं आए हैं कि आप राग गाते जाएं कि हमें तो रसूल से बड़ी मोहब्बत है, हम तो नाते इतनी पढ़ते हैं, हम तो उनके ऊपर कुर्बान ऐसे हैं, हम तो हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारी जाने कुर्बान, कोई फलां कह के तो देखे कोई। वो इसलिए नहीं आए कि आप ये राग अलापते रहें दिन रात, आप मोहब्बतों के दावे करते रहें और करें कुछ ना। वो इसलिए आए हैं कि आप उनकी इताअत करें, ये मकसद है रसूल का। अल्लाह ने इसलिए रसूल भेजे हैं कि लोग उनको फॉलो कर सकें, उनकी लाइफ ऐसी देख के लोग को आसानी हो कि हमने कैसे दीन पे चलना है, तो वो उसके मुताबिक जैसे जैसे वो कर रहे हैं उस तरह से कर सकें, इसलिए अल्लाह ताला ने रसूल भेजे हैं। तो फरमा दिया वह माँ अरसलन, जब माँ आ जाए और आगे इल्ला आ जाए ना, तो इसका मतलब है बाकी और कोई बात ही नहीं, सिर्फ इस बात के लिए भेजा अल्लाह ने कि तुम उनको फॉलो करो। हम फॉलो नहीं सिर्फ करते, बाकी सब कुछ करते हैं, बाकी सब कुछ कर रहे हैं, वो ही काम नहीं करते जिसके लिए उनको भेजा गया। कितनी इताते रसूल है हमारी जिंदगियों में। वलो अन्नहुम इज़लमु अन्फुसहुम जाऊका फस्तग़फरुल्लाह वस्तग़फरलहुम रसूल। अगर वो जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म कर लिया, यानी वो उन्होंने इस तरह मुनाफ़कत की और वो जाके वहां से फैसले कराते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ नहीं समझा, उन्होंने जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया, यानी उन्होंने ये काम करके अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ा ना रसूल का, उन्होंने अपनी ही जान पे जुल्म किया ना, नाफरमानी करके अल्लाह की, वो जब आपके पास आए फिर बख्शिश मांगते हैं, वो अल्लाह से भी और आपसे भी वो बख्शिश मांगे, लवजदुल्लाह तवाब रहीम, यानी अगर इन लोगों को कुछ एहसास हो जाए, पशेमान हो बाद में कि हमने ये क्या किया, उनको एहसास हो जाए, अब हमने सोच लिया कि हमने और नहीं किसी के, आपके पास ही आना है, तो और वो इस पे इतने पशेमान है कि वो अल्लाह से भी माफी मांगते हैं और वो आपके पास भी आके माफी मांगते हैं, तो फिर वो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएंगे। आप इस आयत को लेकर बाज लोगों ने ये बना लिया कि आज भी फिर हमें जब भी हमसे अपनी जानों पे कोई जुल्म हो जाए तो फिर हमें अल्लाह से भी माफ़ी मांगनी चाहिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे भी जाके माफ़ी मांगनी चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और फिर अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल कर लेगा। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ये मामला हो रहा है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के और जाके ताहूत से फैसले कराए थे, तो कहा गया आप जाओ जाके अब रसूल से भी, क्योंकि आपने उनके साथ भी एक उनके को हक को सल्ब किया है, ये उनका हक था, तो आप जाके उनसे भी माफी मांगे। और बख्शीश मांगता उनके लिए रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो दरख्वास्त करें आके कि आप हमारे लिए अल्लाह से माफी मांगे, यानी अब वो खुद भी अल्लाह से माफी मांगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आके रिक्वेस्ट करें कि आप हमारे लिए अल्लाह से माफी मांगे। तो यहाँ पे उन इस वजह से कहा गया कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक हक मारा था, तो अब आपके पास भी आके वो ये दरख्वास्त करें। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि अब आप कब्र पे जाके कहें या रसूलुल्लाह आप भी मेरे लिए अल्लाह से माफ़ी मांगे, आप भी मेरे लिए अल्लाह ताला के सामने मेरी तौबा इस्तग़फ़ार की दुआ करें, तो ये नहीं कहा जा रहा, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वाक़िया है। अब इस वक्त जाके कोई आपकी कब्र पे ये कहे, ये कहाँ से पता चल रहा है? और मैंने आपको ये बता दिया ना कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने एक बात भी नहीं छोड़ी है, एक बात भी ऐसी नहीं छोड़ी है कि जो तुम्हारे फायदे की हो, जिसमें तुम्हारी कोई भलाई हो और उसको बताने से मैंने नहीं छोड़ा, या जिसमें तुम्हारे लिए कोई शर हो उसको बताने से नहीं छोड़ा। तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहना था कि जब बाद में भी तुम्हें तौबा इस्तग़फ़ार करनी हुआ करे तो तुम मेरी कब्र पे आके मुझसे कहा करना, तो मैं तुम्हारे लिए तौबा करूंगा अल्लाह के आगे, मैं तुम्हारी ये दुआ इस्तग़फ़ार की अल्लाह के आगे पेश करूंगा तो वो फिर कबूल हो जाएगी। ये तो ऐसी कोई बात नहीं कही गई, और मैंने आपको सहाबा की भी जिंदगियों से बता दिया, उन्होंने भी नहीं कभी ऐसा किया। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी आए, उनसे भी कहें कि वो भी अल्लाह से आपके लिए दुआ करें, जो भी मुनाफिकीन है उनको कहा जा रहा है, उनके लिए कहा जा रहा है, वो खुद भी अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी आके कहें। इससे ये पता चल सकता है कि दूसरे की दुआ भी आपको फ़ायदा दे सकती है। कोई अगर आपके हक में दुआ करता है, आप किसी को कहते हैं मेरे लिए भी आप दुआ करें कि अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे, तो ये भी कोई मसले की बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, कह सकते हैं। मगर वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ समझते ही नहीं थे ना। अब इस बात में वो तभी आके कहते जब कि वो आपको कुछ समझते, वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ समझते ही नहीं थे। वो कहते थे इनको हम, ये तो हमारे जैसे ही आदमी है, हम क्यों इनके पास जाएं। तो इससे पता चल जाएगा कि वाकई वो अगर सिंसियर हैं तो खुद भी अल्लाह से माफी मांगेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी आ गए। कोई मकाम देता होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कहेगा ना कि आप भी मेरे लिए बख्शिश मांगे। और फिर ये आखिरी जो आयत है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लें। फला व रब्बी का, पस नहीं। अब पस नहीं के साथ क्यों होता है, जैसे ला उकसिमु बिहादल बलद, नहीं मैं कसम खाता हूं, तो ये क्यों होता है, इस तरह से बात क्यों शुरू की जाती है? इसलिए ताकीद आए ताकि नहीं से बात शुरू की। जैसे आप कोई कोई बात किसी की डिनाई करनी हो तो आप कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है भैया, ये बात है। फला पस नहीं, वा रब्बी का, कसम है तेरे रब की। यहाँ पे वा जो है वो कसमिया है, एक वाओ और वाला भी होता है ना, यहाँ पे कसम के लिए। रब्बी का, तेरे रब की, अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि ए नबी आपके रब की कसम है। अब इसके बाद क्या, यानी अल्लाह ताला ने अपनी कसम खा के ये बात फरमाई है, क्या कोई बहुत ही बड़ी बात ही होगी ना। ला युमिनूना, नहीं वो मोमिन हो सकते, वो अपने आप को मोमिन काउंट नहीं कर सकते, चाहे मुंह से कितना भी बोलते रहें, लेकिन वो मोमिन नहीं हो सकते। कब तक? हत्ता, यहां तक के, यु हक की मुंह कफी मा शजर बैना, जब तक के वो आपको हकम ना बना ले, मुनसिफ ना बना ले, काजी ना बना ले उस मामले में जो इख्तलाफ हुआ उनके दरमियान। पहले भी ये क्या आया कि जब भी आपके दरमियान इख्तलाफ हो तो आपने अल्लाह और रसूल की बात की तरफ जाना है, अगर आप वाकई ईमान वाले हैं। अगर ईमान नहीं है फिर जिसे मर्जी फैसले कराते रहो, लेकिन अगर ईमान है तो फिर इधर। इस बात को अब कसम खा के कहा जा रहा है कि ईमान वाले ये हो ही नहीं सकते। अब मोमिन आप अपना नाम रख लें, या आप मोमिन की गर्दान कहते रहे मैं कितनी बड़ी मोमिना हूं, मैं कितनी नेक पारसा हूं, लेकिन नहीं, जब तक आप मुनसिफ नहीं बनाते हर उस मामले में जिसमें इख्तलाफ हो दरमियान उनके। फिर तुम ला यजिदु फी अनफुसिहिम हरजन, फिर दूसरी भी एक शर्त लगा दी गई, फिर जो फैसला वो करा ले ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फैसला कर दे, ला यजिदु फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा कदईता, जो आपने फैसला कर दिया उसमें फिर अपने दिल में कोई तंगी भी ना पाए, वह युसल्लिमु तस्लीम। और ये तीसरी शर्त है ईमान वाले होने के लिए कि फिर वो मान जाए, पूरी तरह मान जाना, सबमिट करते हैं उसके बाद। क्या तीन शर्तें हैं किसी के ईमान वाला होने के लिए, अल्लाह ताला ने बता दिया वो हो ही नहीं सकते जब तक ये तीन शर्तें ना पूरी हो। नंबर वन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनसिफ बनाए। अब आज कैसे मुनसिफ बनाएंगे, मैंने आपको कहा उस वक्त के लोग सहाबा कराम को कोई मामला होता ना, अब तयम्मुम की बातें आ गई, हजरत अम्मार बिन यासिर कह रहे हैं तयम्मुम इस तरह करना है, हजरत उमर कह रहे हैं कि नहीं ये तो नहीं है, अम्मार बिन यासिर किस तरह से कर रहे हैं, कोई कह रहा है जमीन के अंदर लोट जाना, मिट्टी के अंदर पूरा अपने आप को मल लेना, वो ये तयम्मुम हो गया। कोई कह रहा है कि भाई अपने वजू के आजा के ऊपर सारी मिट्टी मल लेना, ये तयम्मुम हो गया। किस तरफ भागे आते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आप बताएं, हमारे दरमियान फैसला करें। वो तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे, अब कैसे होगा? अब कुरान हदीस की तरफ आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तरफ आए, और ये फैसला करेगी कि क्या करना है। और सिर्फ यहां तक नहीं कि आपने उस फैसले को मान लेना है, बस इतना ही काफी हो गया, ठीक है आप मान तो लेते ही हैं। अब एक मानना होता है ना कि ठीक है माना आपने, मान तो लिया, लेकिन पैर मारते जा रहे हैं, दरवाजे मारते जा रहे हैं, और गुस्सा इतना है, और मुक्के मार रहे हैं, और सर दीवारों में मार रहे हैं, और बस ठीक है मैंने मान तो लिया, लेकिन बस बहुत अंदर गुस्सा है। एक मानना है तुम ला यजिदु फी अनफुसिहिम हरजन, अपने दिल में जरा भी कोई तंगी, हरजन ना नकेरा है, यानी जरा सी भी किसी किस्म की भी तंगी नहीं आए, ये उन्होंने फैसला सुना दिया है ना। अल्लाह ताला हमें माफ करे, अल्लाह हमें माफ करे, हम तो अल्लाह के फैसलों के आगे तंगियां दिखाते हैं, हमें हिजाब का फैसला आ जाए, ये क्या बात हुई, ये तो नहीं हमसे होता, अब आया ये तो हम तो नहीं पहन सकते, ये क्या बस मैं तो इतना ही कर सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगी। विरासत के अहकाम आ गए, वो हमें बुरे लगते हैं, हमें कहते हैं ये क्या बात हुई, अब मैं क्यों अपने बेटे को ज्यादा दूं, और बेटी को, बेटी है तो मेरी खिदमत इतनी की है, और क्या सारों को इक्वल दे दूं, और फलाना मेरा बच्चा तो इतना नाफरमान था, और फलाने का भी हिस्सा बनता है, वो तो हमें बहुत बुरा लगता है, उसने तुम्हारे साथ कभी अच्छी भलाई नहीं की। सिला रहमी वो तो नहीं हम कर सकते, माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक हमारे माँ बाप तो हमें कहीं सैर पे ही नहीं लेके जाते थे, वो तो हमारे साथ ये करते थे और अब ऐसे करते थे हमारे साथ, तो ये तो हमें सारे ही नहीं अच्छे लगते। अल्लाह ताला हमें माफ करे, हमें तो कोई भी नहीं अच्छा लगता, पर सिर्फ जो मेरा दिल करता है ना वो अच्छा लगता है। यहाँ पे कहा कि तुम ही नहीं ईमान वाले हो सकते, इस खुशफहमी से निकल आओ, हम बड़े ईमान वाले हैं। क्या ईमान वाले हो अगर तुम्हें उनके फैसले ही पसंद नहीं है? आप देख ले, हर फेज में हमें कहीं ना कहीं एतराज होता है, औरतों को अपने हकूक के लिए बड़ा एतराज होता है, हमें तो कोई हक ही नहीं मिला, ये तो सारे आदमियों को मिल गए, ये क्या बात हुई? कहीं पे मान के ही नहीं देना। अच्छा अगर मान ही लिया है तो फिर बस दिल में इतनी तंगी होती रहेगी, आए ना भी कुछ मुंह से बोले, लेकिन अल्लाह तो दिलों के हाल जानता है ना कि दिल में कितनी तंगी हो रही। आए दूसरे कितने अच्छे हैं, वो तो वहां भी जा सकते हैं, वहां भी ये कर सकते हैं, हम देखो कहीं हमें तो हलाल ही कमाना है, हम तो ये इंटरेस्ट भी नहीं ले सकते, हमारे तो मजहब के अंदर बड़ी पाबंदियां हैं, वहाँ भी शादी के बगैर आप किसी से ताल्लुक नहीं रख सकते, देखो ये कितने मजे से लिविंग टुगेदर करते हैं, और तो हमारे दीन ने तो बस इतना रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है, और फिर तलाक के मामला, अब ये देखो तलाक दे जो मर्जी करें साथ बेशक रहते रहे, अब हम तलाक के बाद साथ ही नहीं रह सकते, हमारी मजबूरियां क्या करें, हमें साथ रहना, मतलब कोई आप फेज उठा लें वहां पे हमें एतराज पे एतराज है, चाहे के चाहे हकूक व फराइज की बात हो जाए, चाहे फजर के ऊपर उठने की बात हो जाए, कहीं मियां बीवी के मामला की बात हो जाए, विरासतों की बात हो जाए, पर्दे की बात हो जाए, कमाइयों की बात हो जाए, कानून की बात हो जाए, कहीं पे भी देखें ये कैसा कानून है, या हाथ काटना तो ये बड़ा तो जुल्म की बात है, अल्लाह ताला हमें माफ करे, मगर कोई फेस छोड़ा नहीं है। तो यहां पे बता दिया गया क्लियर कट और कसम खा के, और फिर हम अपनी नमाज रोजे करके ही समझ लेते हैं हम बड़े ईमान वाले हैं, पक्का मोमिन, मस्जिदें भी जाता है, और ये पक्की मोमिना देखो कितनी नमाज रोजे की पाबंद है, सोम सलात की पाबंद लिख के हम सोचते ये तो बहुत नेक पाक बीबी है, वो मुनाफिक भी करते थे, यहाँ पे आके पता चलता है ना कि उनके फैसलों को मानते कितना, उन्होंने फैसला दे दिया, फलाने का हक हाँ कितना है, उनका फैसला है कि ये वाली मिलावट करने वाला हम में से नहीं है, तो हदीस में आता है, अब ये हदीसें आप सुनते हैं ना, रिश्वत लेने वाला देने वाला जहन्नमी है, तो हमें ये कहाँ चीजें पसंद आती हैं, होते रहेंगे उनके फैसले, हमने तो मानना ही नहीं, मानना ही नहीं है, और मान लिया तो बड़ी तंगी है दिल में, और फरमाया जो भी आप फैसला देने वह युसल्लिमु तस्लीमा, और सरे तस्लीम खम कर दें, जस्ट सबमिट, कहें बस हमने सुन लिया, हमने बस मान लिया, बस इसके आगे जब आपसे सर हमने कह दिया तो फिर कोई बात ही नहीं, चाहे हमारे इमाम ने कुछ कहा है, चाहे हमारे किसी ने भी कुछ कहा है, ये जो उलिल अम्र है ना इनमें इमाम भी आते हैं, वो भी इंचार्ज होते हैं, वो भी इंचार्ज होते हैं आपके रिलीजियस अफेयर्स के, चाहे वो भी कोई ऐसी बात अगर कह रहे हैं जो कि अल्लाह रसूल के उसके खिलाफ है तो नहीं माननी, ये नहीं कि नहीं आप क्या करें ना वो तो इस तरह हैं तो ये वो तो अथॉरिटी हैं फिर हमें उनकी माननी पड़ती है, हम बड़ी इज्जत करते हैं उनकी, तो नहीं, रसूल की बात ऐसी है कि युसल्लिमु तस्लीमा, सरे तस्लीम खम कर दिया जाए इस पे, तब तुम बनते हो मोमिन, तो ये खाली खुली दावों से कुछ नहीं होता कि हम खुद ही अपने आप को मोमिन कहते रहे, ईमान वाले तो हम बहुत बड़े हैं और ये काम करते नहीं है, इसमें हर फेज आ गया, हर उनका फैसला आ गया, चाहे उन्होंने कोई किसी मामले में भी दिया हुआ, हर फैसला इसमें है, तो अब हर जगह पे इस आयत को फिट करके देखें, जो आपके जॉब की लाइफ है उसमें फिट करें, जो आपके घर की लाइफ है उसमें फिट करें, जो आपके रिश्तेदारों के साथ लाइफ है उसमें फिट करें, हर जगह पे कहाँ कहाँ मुझे उनके फैसले कबूल नहीं है, हमारे दिल में बड़ी तंगी आती है कि क्या मुसीबत है ये इस्लाम ने ये कह दिया, अस्तग़फिरुल्लाह, ये हम किस मसले में फंस गए हैं, और दूसरे लोग हमें बहुत देखिए तंगी होती ना वो दिल में होती है, अनफुसिहिम ये कहा गया, दिलों में, जुबान पे चाहे नहीं भी आई दिल के अंदर तंगी है, और दिल में हसरों तो उसे उनकी तरह देख रहे हैं, इनके कितने मजे हैं वैसे, और हम देखो जरा, तो ये दिल में तंगी की ही निशानी है। अल्लाह ताला हमारे ईमान को मुकम्मल फरमाए, अल्लाह हमारे ईमान को मजबूत फरमाए, अल्लाह ताला हमें वाकई पक्का सच्चा मोमिन बना दे, अल्लाह की नज़र में हम ईमान वाले हों। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने इन आयात की।
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.